ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री दो दिन के दौरे पर आज गुजरात जाएंगे। इस दौरान वे सूरत और नवसारी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूरत में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस आयोजन के लिए साज सज्जा का काम पूरा कर लिया गया है। एक भव्य गुंबद भी बनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष कार्यक्रम के लिए नवसारी जिला जाएंगे। वे वांसी बोरसी में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां राज्य भर के स्वयं सहायता समूहों की 25,000 से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज जन औषधि दिवस है। लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आरंभ की गई थी। तब से हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ताकि इस योजना के बारे में जागरूकता और जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। जेनरिक दवाएं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती है। इन केंद्रों पर बाजार की तुलना में 50-80% सस्ती दवाइयां खरीदी जाती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 3 से 4 वर्ष में अपना खुद का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU विकसित कर लेगा। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में AI कोष, AI कंप्यूटर पोर्टल और अन्य AI आधारित पहलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने एक वर्ष पहले इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी थी और अब तक देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने 10,000 GPU का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब यह आंकड़ा 14,000 तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने श्री वैष्णव के लेख विकसित भारत के लिए डिजिटल राह की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लेख में विस्तार से बताया गया है कि देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए अपने डिजिटल भविष्य को किस प्रकार आकार दे रहा है। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार स्वीकार किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अधिकारियों ने दुबई से करीब 19 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की तस्करी करने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। DRI ने खुफिया जानकारी के लिए आधार पर दुबई से मुंबई आए 2 यात्रियों की तलाशी में विदेशी मार्क वाले 1-1 किलो सोने की 21 सिल और 1 अधकटा टुकड़ा बरामद किया है, जिसे उन्होंने अपनी कमीज के नीचे बेल्ट के अंदर छिपा रखा था। दोनों ने सोने की तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। जब्त किए गए 21 किलो 288 ग्राम सोने की कीमत 18,92,00,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल STF और पंजाब पुलिस ने कल संयुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकवादी लजार मसीह को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कल अस्ताना में कजाकिस्तान के सूचना एवं संस्कृति उपमंत्री कनात इस्काकोव से मुलाकात की। उन्होंने श्री इस्काकोव को विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। इस सम्मेलन का आयोजन 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होना है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन के साथ समूचे यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपातकालीन वार्ता शुरू कर दी है। यूरोपीय नीति केंद्र ने कहा है, अमेरिका की नीति में हुए बदलावों के बाद यूरोप को अपने रक्षा का स्वयं प्रबंधन करना चाहिए। लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई की टीम ने 151 रन के लक्ष्य के जवाब में 18 ओवर में 3 गेंदों में 4 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।